فاتحة. بسم الله الرحمن أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقاظني إلى ما مناحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن باب الأمن والأمان اللهم عجل فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الله وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیے محمد والا. جل فرج مدد اللہ کی, اور ابتدا اسی کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. خدایا ہماری زبان سے وہ جملے نکال جو تیری رضا کے قابل اور باعث ہوں, ہمیں وہ سننے کی توفیق دے جو تو چاہتا. آغاز گفتگو ان مجالس کا عنوان ہے زندگانی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, لائف اسٹائل آف اور بلاورڈ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اوور آل آج میں خطوط کو معین کریں گے, پھر آپ کا بھی کچھ جاب ہے, میرا بھی کچھ جاب ہے. آپ کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو یہ کوشش کریں, اور میں خصوصاً میری مائیں جو سن رہی ہیں اور یہ آواز دور دور تک محفوظ بھی ہے اور چل رہی ہے, جس طرح سے اسکول ورک کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے, یہ 10 دن کے مجالس کا بھی ہوم ورک دیں کہ آج آپ نے مجلس میں سیکھا کیا. بچے اگر ممکن ہو سکا تو نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں, ان مجالس کو درسگاہ بنائیں, اور یہ مجلسیں درسگاہ ہیں, اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس انہی مجلسوں کی وجہ سے. اور اگر اس کو پروڈکٹیویٹی بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے ہی نہ بیٹھیں, حصول علم کے لیے بیٹھے. مجلس میں جانا ہے, ثواب ملے گا, یقیناً ثواب ہے, لیکن ثواب دوبالا اس وقت ہو سکے گا جب ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں. اگر عمل نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سننا اور مجالس میں آنا ٹھیک ہے, اچھا موقع گزر گیا, لیکن جو معصوم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا, جو قرآن چاہتا ہے وہ نہیں ہوا. گزارش ہے کہ ان مجالس کو جیسے کہ اہل بیت نے ہمیں تربیت دی ہے اسی طرح سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ یہ مجالسیں ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوں, ورنہ سال گزشتہ بھی محرم آیا تھا اور چلا گیا, اب بھی آیا ہے اور چلا جائے گا. جب زندگی تیزی سے گزر جاتی ہے تو 10 دن کیا ہے, تو پھر ان 10 دنوں میں سیکھا کیا ہے, سیکھنا کیا ہے. امید ہے کہ ان گزارشوں کو سرسری طور پہ نہ دیکھیں بلکہ اس پر غور کریں. پہلی گزارش قرآن پر کام کرنے کی ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے روزانہ ایک رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کی, من قرأ 10 آیات فی کل لیلہ لم یکتب من الغافلین, اس کا نام روز قیامت غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا. اب اس کو الابریٹ کرنا ہے, سمجھنا ہے کیا چاہتی ہے یہ حدیث. جس طرح سے قرآن ان ڈیپتھ حقیقت رکھتا ہے, بتون رکھتا ہے, اس کا ظاہر ہے, اسی طرح حدیث معصوم بھی بہت ان ڈیپتھ رکھتی ہے. ایسی نہیں ہے حدیث معصوم, معصوم نے کہہ دیا, اس لیے کہ دونوں کا منبع ہی ایک ہے. وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, वो अपनी तरफ से बोलते ही नहीं हैं, जो कुछ बोलते हैं उधर ही किया था है। जब ऐसा मसला है तो जिस तरह से कुरान पर गौर करने की ज़रूरत है उसी तरह से हदीस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जो 10 आयतें पढ़ेगा वो गाफिल नहीं रहेगा। गाफिल कहते हैं उस शख्स को जो किसी शय के वजूद को देख रहा हो, सुन रहा हो, महसूस कर रहा हो, लेकिन नेगलेक्ट कर रहा हो। गफलत नेगलिजेंस को कहते हैं। उसके मुकाबले में जिक्र है, मसलन सामने रेड लाइट आ गया तो याद दिलाया कि रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए, लेकिन जहन में आया कि यहां पर तो रिश्वत चलती है, पाकिस्तान है या जा सकते हैं, चलो आगे बढ़ो यार, कौन क्या करेगा, उधर से निकलो, राइट से निकलो, लेफ्ट से निकलो, ये गफलत है। कानून को ना अपनाना गफलत। सरकार ये फरमा रहे हैं कि कुरान इंसान की गफलतों से, गफलत के पर्दों से हटा देता है। तो कुरान की तिलावत कीजिए और कुरान को समझिए और कुरान को समझने के बाद उस पर अमल कीजिए। हदीस में मासूम ने फरमाया कि चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला फरमाते हैं अल कुरान यहदी इलल इमाम, कुरान इमाम की तरफ हिदायत करता है, वल इमामो यहदी इलल कुरान, कुरान कहता है इमाम के पास जाओ, इमाम फरमाते हैं कुरान के पास जाओ। यानी अगर आप इसको एलोबरेट करना चाहते हैं तो आज की दुनिया में मसलन अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, 4 साल 5 साल की स्टडी के बाद जब उसको हॉस्पिटल में लाते हैं, खुसन मगरबी दुनिया में ये शुरू हो चुका है, केस स्टडी करवाते हैं। केस स्टडी के माने क्या हैं, इन्हें नया अभी जो डॉक्टर बना है वो थ्योरेटिकल नॉलेज को रखा है, अभी उसने सीखा है जो कुछ इल्म सीखना है उसको, अभी प्रैक्टिकली उसको आदत ही नहीं हुई है। मरीज को हवाले करते हैं कि ये मरीज तुम्हारे हाथ में है, तुम रिसर्च करो, इसका इलाज करो। यह है उसकी प्रैक्टिकल जिंदगी। जब वो स्टडी करेगा तो प्रैक्टिकली तौर पर उसको तहकीक करना पड़ेगा, इस मर्ज की दवा क्या है, कहां 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 किस किस को ये मर्ज आया और किस तरह से इस मर्ज का इलाज किया गया। इसका नाम है प्रैक्टिकल स्टडी, बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर हमको स्टडी। इसी तरह से केस स्टडी कराना है दीन की भी। हमारा जो दीन है उसकी केस स्टडी नहीं हुई है, इसलिए कि हमने दीन को सेकेंडरी बना करके रखा है। जुमा आ गया तो, मुहर्रम आ गया तो, किसी का इंतकाल हो गया तो, इस्लाम ऐसा नहीं। इस्लाम कहता कि ना, पूरी लाइफ में तुम्हें, तुम्हारे पर फरीजा है कि पूरी लाइफ में इस इस्लाम को अपनाओ, तो उसके लिए केस स्टडी होना चाहिए। हर घर में हजारों केस हैं, मगर कभी स्टडी की हमने कि कुरान को टैली करके कहां पर ये प्रॉब्लम आया था और कुरान ने इसके हल करने का सलीका क्या बताया है, अहले बैत ने क्या बताया, हमने नहीं किया। तो करने की जरूरत है, और आइंदा नस्लें अगर बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो कुरान के थियोरेटिकल स्टडी को केस स्टडी में तब्दील करेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आली मोहम्मद, जरा से इससे बेहतर सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद आली मोहम्मद व अज्जिल फरज। ब्रदरान अजीज, जिंदगानी अहले बैत एक मौजू है, बहुत वसी, मैं फोकस नहीं कर रहा हूं कि टोटल जिंदगी को मैं प्रेजेंट करूंगा 12 दिन में, इम्पॉसिबल है। मेरी फोकस है डे टू डे लाइफ में अहले बैत ने किस तरह से जिंदगी गुजारी, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, जीते कैसे थे, हर मरतबा दुआ करके मंगवाते थे या मेहनत भी करते थे, इसलिए कि उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी के लिए नमूना है, वो मेरे लिए मेंटोर हैं, एग्जाम्पल हैं। उनकी जिंदगी को देखूंगा तो फिर मैं अपनी जिंदगी को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब तक जो सितम जरीफी हुई है हमारे मजमे के साथ, उसको भी मैं बताता हूँ। इट्स ए बिग ट्रेजेडी हमारी कौम के साथ जो हुई फॉर नियरली 3-4 decades। क्या हुआ, हमने अहले बैत को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। कैसे अलग किया, और अच्छी तरह से समझिए जिन बातों को अर्ज करने जा रहा हूं। और चूंकि आज मुकदमे की बात है और बहुत ज्यादा इन बातों को समझना जरूरी है, और मेरी आदत रिपीट करने की नहीं है, तो उम्मीद है कि इन बातों को बहुत गौर से सुने। हमने अहले बैत की जो जिंदगी को सुना है वो उस एंगल को सुना है जो आउट ऑफ रीच है, जो हमारे हाथ उन तक पहुंचते ही नहीं है। क्या माने हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की हयात मल्टी डायमेंशनल है। क्या माने मल्टी डायमेंशनल है, अगर आप एक हीरे को सामने रखें, हीरे के कई कट होते हैं, ठीक, उसके डायमेंशन कई कई डायमेंशन होते हैं। आसान नहीं है कि हीरे की हकीकत को समझ सके जब तक के कद्र गौहर शौह दानद या दानद गौहरी या जौहरी। अगर किसी हीरे को देखकर इसकी क्या कीमत है, ट्रिपल सी है या नहीं है, उसको समझना आसान नहीं है जब तक कि उसका इल्म ना रखते हो। तो सामने के हीरों को हम नहीं समझ पाते पत्थर के, आसमानी उन हीरों को क्या समझेंगे जिनके लिए कुरान ये कहता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। मुश्किल है हमारे लिए। तो वो अगर एक हीरे के दो हिस्से करें तो एक हिस्सा हो जाएगा वो जो आउट ऑफ रीच है, एक हिस्सा वो है जो हमारे रीच में है। मिसाल को अच्छी तरह से समझें, कुरान ने भी सरकार की हयात को इन दो डायमेंशन में गुफ्तगू की है। एक वो डायमेंशन है जो तुम्हारे आउट ऑफ रीच है, अब कुरान ने बयान किया है, जैसे दना फतदल्ला फकाना काबा कौसाइन आओ अदना। वो करीब होते गए होते गए होते गए, किससे करीब हुए, ज़ाते परवरदिगार से करीब हुए। कितना करीब हुए, दो कमानों का फासला था। मजा आता है सुनने में लेकिन किसी में दम नहीं है समझाने की ना समझने की। खुदा कह रहा है तुम्हारी रगेत गर्दन से करीब हूं, तो ये किससे करीब हुए। आसान है मसला समझाना ना समझाना, आसान है। हम हाँ लुत्फ उठाते रहे, आसान मसला नहीं है। कुरान ये डायमेंशन को बताता है जो आउट ऑफ रीच है तुम्हारे। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, वो इतना करीब हुआ जाते परवरदिगार से कि दो कमानों का फासला। यानी मारफत इलाही में अगर कोई करीब जा सका था तो वो सरकार रिसालत माफ थे, अगर उसके करीब कोई था तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। गौर करें आप अच्छी तरह से, ये वो डायमेंशन है जो हमारे आउट ऑफ रीच है। यानी मैं प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में उस डायमेंशन पे काम नहीं कर सकता, हालांकि काम करने की सलाहियत मुझ में मौजूद है। तो दूसरा डायमेंशन कुरान बताया कर रहा, उसकी तरफ मैं काम कर रहा हूं। ये 12 दिनों में जो आपके साथ इंशाल्लाह रहेंगे, इसी पे हमको काम करना। वो कौन सा डायमेंशन है, लकत खाना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतन हसना। यही आयत मेरा मौजू है, और ये आयत सूरह अहज़ाब कुरान का 33वां सूरा है, उसकी 21वीं आयत है, 33 chapter आयत नंबर 21। इस साल मैं रमजान में 15 दिन पहले 15 दिन दारुस्सलाम ईस्ट अफ्रीका में था, मजा आ रहा था मजमे में। एक तो मोमिनीन की क्यूरियासिटी, बहुत से लोग हाथ में नोटबुक और नोटबुक में लिख रहे थे, और मैं आधी भी आयत नहीं पढ़ रहा था, नीचे से अक्सर मोमिनीन दूसरी आयत का हिस्सा पढ़ रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन मजालिस को इसी तरह से बनाइए कि आलिम इधर एक जुमला शुरू करे, आयत को खुद आयत पढ़िए, तब कहीं ये मजालिसें नूरानी तर होती जाएंगी और लुत्फ आता जाएगा, उसके बाद दूसरे स्टेप तक भी हम ले जा सकेंगे इन मजालिस को। हमने ये कहकर नारा लगाया कि फातिमा की कनीज ने 20 साल कुरान से बात की, हम में यह सलाहियत नहीं कि 20 सेकेंड बात कर सकें। कितना फर्क है हम में और हमारी एंजॉयमेंट में। हम मजालिस को एंजॉयमेंट के लिए सुनना चाहते हैं। इमाम हुसैन प्रैक्टिकल इमाम है, एंजॉयमेंट का इमाम नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वअज्जिल फरजहुम, गौर करें बहुत अच्छी तरह से। यकीनन अहले बैत के फजाइल हमारे लिए भाते हैं, हमको बहुत लुत्फ आता है, आना भी चाहिए। और ये नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनके तस्करे से हमारे चेहरे पर बशाशत आती है, इनके चेहरे पे हमारे गम दूर हो जाते हैं, हमारे रंज दूर हो जाते हैं। ये फजाइल ही ऐसे हैं, होना ही चाहिए। लेकिन फजाइल को सुनने के बाद अगर मैं जिंदगी में अमल करूं तो उसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, असर कितना होना चाहिए, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो मासूम चाहते हैं कि तुम अमल करो। कैसा अमल करो? कि तुमको जब लोग देखें हम याद आ जाएं। मासूम की हदीस है कि तुम ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ गुजारो कि तुमको देखते हुए लोग कहेंगे भाई इमाम सादिक का मानने वाला है, इमाम मुवक्कर का मानने वाला है, मौला अली का। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और यही है वो जिंदगी। लकद काना लकुम, लकद अरबी में इंडीड इंडीड, श्योरली श्योरली, जब किसी चीज को एम्फसाइज करना हो। कद कामत सलात, श्योरली नमाज कायम हो गई, नमाज हैज बीन एस्टैब्लिश, नमाज तैयार हो गई है। लकद के माने और जरा सा एम्फसाइज है, यकीनन यकीनन। काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, ये वो डायमेंशन है जो हमारे और आपके रीचेबल है, हम लोग उस पर अमल कर सकते हैं। वो डायमेंशन वो है जिसमें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो डायमेंशन रीच के काबिल नहीं है, हम समझ नहीं पाते। आलम ही नहीं समझ पाते तो रहमत को क्या समझेंगे? पूरी यूनिवर्स क्या मेनी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उसके लिए रहमत, हम जमीन ही में रहमत नहीं समझ पाए। इसलिए कि अगर समझते तो किसी के घर को लूटते कहां से थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद, किसी बेगुनाह को मारते कहां से थे, किसी का खून कैसे बहाते थे? रहमतुल आलमीन के उस डायमेंशन में नहीं मान सकते। तो बरादरान अजीज, मेरी इन मौजूआत में मैं उस मौजू को बनाना चाहता हूँ जो हमारे मजलिसों में बयान नहीं होती, होती भी तो हम लोग अहले बैत वो अलग थे, मैं अलग हूँ। ये ट्रेजेडी है, ये हमारी तकलीफ है। अगर वो अलग होते थे उनको आने की जरूरत ही क्या थी? ए शहजादी कौनैन, लकद तमज्जलत यदा, इतनी चक्की पीसी कि जिसके हाथ गट्ठे आ गए। क्या जरूरत है फातिमा जहरा को चक्की पीसने की? जिब्राइल आ जाओ, आए हैं, देखे दुनिया ने देखी, जिब्राइल आए हैं, मीकाएल आए हैं, झूला झूला रहे हैं, हर मरतबा क्यों नहीं हो रहा है? करना मेरी जिंदगी एक बेवा के लिए, गरीब के लिए, एक झोंपड़पट्टी में रहने वाली के लिए, एक झोंपड़ी में रहने वाली के लिए, गरीब के लिए नमूना हो कयामत तक। मजदूर मजदूरी करते हुए शर्माए नहीं, ये कहे कि मेरी शहजादी ने भी किया था, मैं भी कर रही हूं। हदफ यही है। इस हदफ को हम लोग बहुत एक्सप्लोर करें, जरूरत से ज्यादा काम करें इस पर। قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی حیات کا اس اینگل تم دیکھو جو تمہارے لیے نمونہ ہے، مینٹور ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی حیات رسول میں تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہے. اسوۂ حسنہ یعنی ایگزامپل ہے. سوتے کیسے تھے دیکھو ان کو، جاگتے کیسے تھے دیکھو ان کو، بات کیسے کیسے کرتے تھے دیکھو ان کو، بولتے کیسے تھے دیکھو ان کو، نماز کیسے پڑھتے تھے دیکھو ان کو، بچوں کے ساتھ رہتے کیسے تھے دیکھو ان کو، گود میں کس طرح بچوں کو کھلاتے تھے دیکھو ان کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم ان کی حیات میں تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہیں. ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کرو. یہ نہ کہو وہ سرکار تھے میں کہاں، الگ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ساری گڑبڑ کرتے ہیں. وہ بی بی فاطمہ زہرا تھیں، میں الگ ہوں. جیسے ہی الگ کیا جو چاہے شرارت کرنا کرے. قرآن نے کہتا نا یہ نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لکم، لک تمہارے لیے، مسلمان ہر مسلمان کے لیے. مجالس میں برادران اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی لوگ بھی شریک ہوں، اور وہ لوگ بھی یہاں پر مجلس حسین ہے، عام دعوت ہے، یہاں پر ریسٹرکشنز نہیں ہیں، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہندو مسلم کوئی بھی. اس لیے کہ جس طرح سے قرآن انسانیت کے لیے ہے، حسین بھی انسانیت کے لیے، اہل بیت بھی انسانیت کے لیے. یہاں نفرتیں نہیں بانٹنا ہے، یہاں محبتیں بانٹنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر قرآن نے فلسفہ بھی سکھا دیا، کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہیے اس کے لیے. اللہ چاہے نہیں چاہیے، مائنس اللہ جو چاہے کرو، نکال دو زندگی سے اللہ کو، جو چاہے کرو. مولا نے خود فرمایا لولا التقی لکنت ادھا الناس، اگر تقوی نہ ہوتا علی جیسا کوئی چالاک دنیا میں نہیں ہوتا تھا. میرے پاس کون ہے؟ میرے پاس اللہ ہے، اس کے پاس اللہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا لولا التقی، اگر تقوی نہ ہوتا لکنت ادھا الناس، ہوشیاری مجھے معلوم تھی. لیکن مال کس کے سامنے ہوشیاری کرنا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں رہنے والا. تو چالاک یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو ہٹا دے، چالاک وہ ہے جو اس کی ذات کو ہر مرتبہ سامنے رکھے. امام مولا کائنات اہل بیت نے یہ تربیت ہمیں دی ہے. یرجو اللہ کس کے لیے؟ جو چاہتا ہے ذات پروردگار سے قریب ہونا چاہتا، ان کے لیے نمونہ ہے. نہیں ہونا چاہتا تو کچھ بھی کر لے. اور نہ صرف یہ بلکہ یوم الآخر، آخرت کو بھی سامنے رکھ. اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اللہ کی یاد کو زیادہ دلوں میں زندگی میں بسائے، اس کے لیے ہے. تو برادران عزیز، یہ مجالسیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے بلائی گئی ہیں، مگر حسین اسلام کے لیے امام حسین نے جگ جان دی ہے. پوری زندگی امام حسین نے نچوڑ پیش کی ہے، صرف اور صرف ان لو وتھ اللہ، اللہ سے محبت میں. کسی سے لو، ہر ایک سے لو کیجئے، محبت ہر ایک سے کیجئے، نفرت دل میں رکھے ہی نہیں. لیکن اگر آپ ان لو اگر ہیں، کسی سے محبت میں آ جائیں، تو پھر آپ کچھ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کیا چاہتا ہے. اگر وہ منزل آ جائے تو ہماری یہ مجالسوں میں چار چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ، بہت جلدی مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی پریکٹیکلٹی میں آ جائے گی. یہی موضوع ہے ہمارا 12 دن میں، کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے، आया उसी तरह से जिस तरह से आज का मौलवी गुजारता है, कोई खतीब गुजारता है, आया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मेहनत की है नहीं की है, की है तो किस तरह से की है, आया इन लोगों ने अपने ज़िंदगी को एक एक लम्हात को गिना है तो किस तरह से गिना है, इसलिए कि पूरी मुकम्मल ज़िंदगी टोटल हयात कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए नमूना है, तो एक लम्हा भी अहले बैत की ज़िंदगी का बेकार नहीं है। कब समझेंगे आप? जब हम लोग उनकी ज़िंदगी को बहुत गौर से मुताला करें, बहुत ज़्यादा गहराई से मुताला करके समझने की कोशिश करें और समझें काय के लिए, इसलिए कि ताकि हमारी ज़िंदगी में वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाए। जैसे ही मोहब्बत शुरू हो गई रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, जैसे रिफ्लेक्ट हुई उसके बाद इंशाल्लाह दुनिया के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम हल होने का वाहिद तरीका ये मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। बरादरान अजीज, जिंदगी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सरकार की हयात, आज मैं थोड़ा सा टच करूंगा, कल मुकम्मल सरकार की हयात पे गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद हर इमाम की हयात पर मुख्तसर सा एक एक मजलिस में हमारे सामने खुलासा आए और उनकी ज़िंदगी से हम लोग नतीजा निकालें और फिर करबला को भी करबला की तरह समझें, करबला को मेरी भलाई का जरिया ना समझें, करबला को दीन की बका का जरिया समझे। करबला ऐसे मेरी भलाई की जगह नहीं है, करबला दीन चाहता था और डिमांड है करबला कि तुम करबला ही बनना चाहते हो तो आओ यहां पर, प्रैक्टिकली आओ यहां पर, देखो किस तरह से इमाम हुसैन ने जिंदगी को गुजारा है करबला में। तो सरकार की हयात में कुरान ये कहता कि नमूना है, नमूने के लिए कुरान ने भी पेश किया है, अहादीस ने भी पेश किया है लाइफ को। एक साइंस डेवलप हुई, उस साइंस का नाम है सीरतुन नबी। पूरी हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स में यानी पूरे तारीख अंबिया में इतनी डिटेल स्टडी ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की मुकम्मल हयात को इतनी गौर से किसी ने नहीं देखा जितनी गौर से सरकार की हयात को देखा है। ये तारीख का बहुत बड़ा कारनामा है, यानी सरकार का एक एक लम्हा रिकॉर्डेड है। तो इसके माने कि प्राइवेसी सरकार की थी ही नहीं, आया है तवज्जो का तालिब हूं, यानी ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आसान काम नहीं है कि इंसान की अपनी प्राइवेसी खत्म हो जाए, अपनी खलवत खत्म हो जाए और हमेशा जलवत में रहे, इसलिए कि रहमत वाला हमेशा जलवत में ही रहता है, खुफिया जाता ही नहीं है, रहमत है उसकी हर की जिंदगी, उसकी रहमत ही रहमत है। बरादरान अजीज, सरकार की हयात के लिए तारीख ने यह बयान किया है कि सीरतुन नबी एस्टॉब्लिश हुई, यानी सीरा लिखने वालों ने सीरत लिखी इब्तिदा से लेकर आज तक, और हर एज में सीरा लिखने वाले मौजूद हैं, अब तक भी सीरा लिखने वाले, सीरत नबी लिखने वाले, एक साइंस डेवलप हुई है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स तैयार हैं जो हर एज में इसको एलोबरेट किया जा रहा है, फिर भी जितना समझे कम है। तो क्यों? इसलिए कि आपकी हयात ही कुछ ऐसी है कि जितनी गहराई से मुताला किया जाए उतना ही कुरान समझ में आता चला जाएगा, उतनी ही जिंदगी आसान होती चली जाएगी। जब हम इनकी जिंदगी को अलग कर देंगे अपने आप को परेशानियों में ला लेंगे। तो इसीलिए आज का पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमने हकीकत से अपने आप को अलग कर लिया। जो हकीकत के साथ थे उनका नाम है मासूम, जो हकीकत से जुदा हो गए वो है इंसान। अगर इंसान चाहता है तो जाए इस दरवाजे पर, फिर सर को झुकाए, जब इस दरवाजे पर झुकाएगा फिर उसकी कामयाबी मिलेगी, जब तक झुकेगे नहीं बुलंदी मिलने वाली नहीं है। जुमला हमारे पास अभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये जुमले मजमे में अभी इस्तेमाल नहीं होते, अनफॉर्चुनेट। लफ्ज़ इंसान कामिल, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, हमारे मजालिसों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। इंसान कामिल, सरकार कौन थे? इंसान कामिल। इमाम अली कौन थे? इंसान कामिल। हम लोग क्या करते हैं, मौला का जहूर हुआ जी 13 रजब को जहूर है अली इब्न अबी तालिब। क्या कहना चाहते हो भाई जहूर से? विलादत नहीं हुई मौला की? नहीं भाई, वो अलग है। जहूर कहकर के मैं धोखा देना चाहता हूं अपने आप को, ये अकीदत नहीं है। जब जहूर कह रहे हो तो मौत को गायब कहो, शहादत को गायब हो गए सब कहो ना, शहादत को शहादत मानते हो, जाते हो नजफ में जियारत करते हो, कब्र की जियारत करते हो, कहते हो मौला यहां पर तशरीफ फरमा है, बताया कि वो अलग है ये अलग। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन गुफ्तगू को करने का मकसद मजमे को एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जिसका इंसानी मुआशरे से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। इस्लाम चाहता ना इनकी प्रैक्टिकल टचेबल सेंसेबल जिंदगी को देखो, इनकी जिंदगी को टच करो, इनकी जदी को महसूस करो, देखो। इसलिए कि इन्होंने जिंदगी गुजारी है, पैदा हुए हैं, शहादत हुई है, खाए हैं पिए हैं, जिंदगी गुजारी है, इज्दवाज की है, बच्चे उनके हुए हैं, बच्चों में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। इसलिए बताया कि ताकि तुम भी जानो कि जब अच्छे हो तो समझो कि तुम्हारे पास वो सलाहियत मौजूद है जो इमाम ने तुम्हें तरबियत दी है, बुरी है बुरे हो तो डरो भी नहीं, इसलिए कि तुमने अगर कोशिश कर दी है तो ज़ाते परवरदिगार उनका भी देखेगा। नूह की औलाद भी। तो ब्रादरान अजीज, तो याद रख लीजिए कि हयात मासूम को ऐसे जुमले इस्तेमाल करके जिंदगी से हटाइए नहीं, अलग बात कीजिए, बल्कि ऐसे जुमले इस्तेमाल कीजिए कि हमारी जिंदगी में हयात मासूम प्रैक्टिकली आता चला जाए। जब आएगा तो हमें कमाल का कुछ हिस्सा मिलेगा। इंसान कामिल के माने 100% इंसान। अभी मजा नहीं आया किसी को? मौलाना इंसान कामिल क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहूं भाई, कुरान कह रहा है आना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम जैसा हूं, आंख भी रखता हूं, जबान भी रखता हूं, कान भी रखता हूं, तुम जैसा हूं, खाता भी हूं पीता भी हूं। याद रख लो तुम्हारी जिंदगी मेरी ही तरह है, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर है, यूहा इलैया, मैं मरबूत हूं तुम मरबूत नहीं हो जी। तुम भी मरबूत हो सकते हो, तुम चाहो तो मरबूत हो जाओ, खुदा ने सलाहियत दी। हदीस में एक अजीब व गरीब हदीस देखिए, बहुत मुश्किल है बाज वक्त। मैं अपने आप के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह जी, कोशिश हम लोग करें कि उनकी जिंदगी को हिस करें, महसूस करें, और महसूस करेंगे इंशाअल्लाह तो आप कोशिश ये करेंगे कि डुप्लीकेशन यानी उन्हीं की तरह चलने की तरह से कोशिश करें। यही चाहता है ज़ाते परवरदिगार, कुरान ने यही हमें तरबियत दी है। आज के लिए आप इब्तदाई खतूत मुअय्यन हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आगे बढ़ करके कोशिश करेंगे। जहां फजाइल का मसला आएगा हम लोग इस पर गुफ्तगू करेंगे। मसाइब से पहले हम करबला को भी एनालाइज करेंगे, इसलिए कि आया करबला कोई ट्रेजेडी थी, हो गई, ख़त्म हो गया? ना, करबला एक दायमी हकीकत है, और इस दायमी हकीकत का पाना भी हमारा फरीजा है। और ये दायमी ऐसी हकीकत है कि जिसके नाम से आज कुफ्र डरता है। छोड़ दीजिए इमाम हुसैन, ज़ियारत हुसैन से दुनिया डरती है। ये बमबारी वगैरह क्यों हो रही है? डर रहे हैं ज़ियारत, अरे ज़ियारत करना चाहते, छोड़ो यार ज़ियारत करने दो। जानते हैं ये सिर्फ ज़ियारत नहीं है, किरदार के बदलने की जगह का नाम है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहला मरहला आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लकत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना के مثال پیش کی ہے یا نہیں پیش کی ہے، ایک جملہ کہہ کر کے گزروں گا، پھر کل پرسوں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. برادران اہل سنت اور ہم میں فرق یہی ہے، ہم لوگ حیات سرکار کو اسٹریچ کر چکے ہیں اب تک، برادران اہل سنت نے 11 ہجری میں کمپلیٹ کر لیا ہے. 11 ہجری میں سرکار اس دنیا سے گئے، ختم ہو گئی ان کی تاریخ، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آج تک بھی سرکار زندہ ہیں. کس طرح سے زندہ ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں قال الصادق، یہ قال الصادق نہیں ہے، قال المحمد ہے. ہم کہتے ہیں قال الباقر، قال الباقر نہیں ہے، قال رسول اللہ ہے. ہم کہتے ہیں امام حسین کربلا کو گئے، نہیں امام حسین نہ گئے بلکہ سرکار خود گئے کربلا کو. یہ فرق ہے ہماری آئیڈیالوجی میں، ہماری فکر میں، غیر کی فکر میں، یہ فرق ہے. اور یہ فرق ہم پروف کے ساتھ بتاتے ہیں. آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا کا انقلاب برپا کیا ہے امام نے، آیا وہ ویل انفارمڈ تھے یا نہیں تھے؟ جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ امام واقف تھے. میں اس حسین کو مانتا ہی نہیں جو کربلا میں جا کے شہید ہو گیا، میں اس حسین کو مانتا ہوں جو آگاہ شہید ہے. ویل آرگنائز تھی کربلا، ایسا آرگنائز کیا کہ سب کچھ بھلاؤ مگر کربلا نہیں بھلا سکتے. جی غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1,25,000 کا مجمع تھا، 1,25,000 کا مجمع 70 دن میں بھول گیا. امام حسین نے کہا نہ 1,25,000 کو نہیں لے جاؤں گا، 72 کو لے جاؤں گا مگر کبھی دنیا نہیں بھلا سکے گی. امام حسین کا انقلاب بالکل عجیب انقلاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آرگنائز امام حسین نے اس طرح سے کیا کہ سب کچھ بھلاؤ لیکن اس کو نہ بھلاؤ. کس طرح سے؟ آگاہ. کس طرح سے؟ نانی نے پوچھا بیٹا اطلاع ملی ہے کہ تم جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا ہاں نانی جان جا رہا ہوں. اور یہ بھی اطلاع ملی تم عراق جا رہے ہو؟ ہاں نانی جان اطلاع آپ کی صحیح ہے میں جا رہا ہوں عراق. بیٹا بیٹا میں نے نانا سے سنا تھا جب میرا حسین کربلا کی طرف جا رہا تو سمجھنا وہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، واپس آنے والا نہیں ہے. دیکھیں کتنی آگاہ حقیقت ہے. دنیا میں کتنے یہاں پر روزانہ مومنین ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، کون کسی کی یاد باقی نہیں رہتی. یہ کون ہے جو ہمیشہ باقی رہ گئے؟ یہ قائم مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا تھا اور جس کا ہر فرد نے قیام کیا تھا، اس لیے اس کی یاد باقی ہے، وہ باقی رہے گی. نانی جان مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیے. اشارہ کیا، کربلا کی زمین سامنے آ گئی. یہ کربلا ہے، یہ فرات ہے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں ہمارا قافلہ ہوگا اور یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں گے اور یہاں سے سلسلہ شہادت شروع ہوگا. یہاں علی اکبر، یہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہاں نانی جان، یہ جو نشیب کا مقام ہے وہاں آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا. کون ہے یہ؟ آگاہ ہے امام، آگاہ ہے. کربلا کو اس طرح سے سنیے سمجھیے، رونا بھی ہے، مسلسل رونا ہے، لیکن کربلا کو سمجھ کے رونا ہے کہ کتنا آگاہ ہے یہ شخص، بتا رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. مولا پھر جب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے پھر جا کیوں رہے ہیں؟ بہت سے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں مولانا بتائیے، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہی از ویل اویئر، جب جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے تو وہاں جانا. قرآن کہتا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. امام نے ہلاکت میں ڈالا. سوال بہت اچھا ہے لیکن ذرا جواب بھی تو لے لیجئے. کسی دروازے سے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، बेटा बीमार होता है, पूछ लिए जो बाप से कि दौलत को रोक ले, बाप ये कहेगा पूरी दौलत कुर्बान हो जाए लेकिन बेटा जिंदा हो जाए। इमाम हुसैन ने भी इसी तरह से देखा अपने वजूद को और इस्लाम को। इस्लाम इमाम हुसैन की निगाह में नाना की गोद में पलने वाली हकीकत का नाम है, और हुसैन अपने आप को उस दौलत को समझ रहे हैं जिस हकीकत को बचाने के लिए रखी गई है। इमाम ने जब मवाजना किया, इमाम ने कहा सब कुछ दे दूंगा लेकिन इसको बचाऊंगा, ये कुर्बानी है, कुर्बानी देना। अगर आप भी होते हैं तो कब, अगर मारिफत इंसान रखे तो यही होगा। एक मरहला ये। दूसरा, करबला का मंशूर, मैनिफेस्टो ऑफ करबला को भी समझना है सारे आजादारों को। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है गुजारिश करता हूं इस मंशूर करबला को समझें। मदीने का गवर्नर बुलाता है, इत्तला देता है अमीर शाम के मरने की। इमाम ने कलमा इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इमाम ने जवाब दे दिया हमारा ताल्लुक यहां से नहीं है, वहां से है, काफी था, लेकिन समझा नहीं। जब बायत का सवाल हुआ तो इमाम ने एक छोटा सा खुतबा इंशा फरमाया, नहनो अहलो बैतिन नबुव्वा, हम नबुव्वत के अहले बैत हैं, मोहम्मद के नहीं। हमारा ताल्लुक मकसद से है, पर्सनालिटी से नहीं है, हदफ है। नहनो अहलो बैतिन नबुव्वा वो मादेन रिसाला, हम रिसालत के मादन हैं। मादन यानी माइंस, अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड माइंस, सिल्वर निकलता है तो सिल्वर माइंस, अगर हीरे निकलते हैं तो एमरॉन डायमंड माइंस, तो कहां से क्या निकलता है, का हमारा घर जहां से रिसालतें निकलती हैं। यानी आदम भी यहां से, नूह भी यहां से, इब्राहिम भी यहां से, मूसा भी यहां से। मामूली जुमला नहीं है, मौला हुसैन का जुमला है। नहनो अहलो बैतिन नबुव्वा व मादन रिसाला, और रिसालत के मादन है। इसीलिए अस्सलामु अलैक या वारिस आदमा सफवतिल्ला, या वारिस नूह नबीइल्ला, वारिस इसलिए कि मादन है। उसके बाद फरमाया मादन रिसाला व मख्तलफ अल मलाइका, मलाइका हमारे घर में नाजिल होते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान भी गवाही दे रहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाजिल होते हैं। अब भी अगर तलाश है तो आओ हमारे ही घर में आते हैं। और मख्तलफल मलाइका, उसके बाद मौला ने फरमाया बेना फतहल्लाह। मैं पूरी जिंदगी इस जुमले को बोलना चाहूं तो मर जाऊं तो बोल नहीं सकूंगा, जिंदगी खत्म है। बिना फतहल्लाह बिना इख्तेमो, अल्लाह ने हमसे ही शुरू किया है, हम पर ही खत्म करेगा। इम्पॉसिबल है इसके वर्चुस को बयान कर सकें, फजाइल को बयान कर सकें, समझ सकें कि इमाम क्या कहना चाहते हैं। इमाम ने अपनी पर्सनालिटी को बताया हुआ एम आई। उसके बाद यजीद शारिब खुमरिन, शराब का पीने वाला, तो मालूम हुआ हुसैनी कभी शराब नहीं लगा सकता, पी नहीं सकता। इमाम हुसैन बता रहा मैं कौन हूं, यजीद कौन है, यजीद शारिब खुमरिन कातिल नफ्सिल मुहर्रमा, बेगुनाहों को कत्ल करने वाला। अब ये जो बेगुनाह को कत्ल करने वाले कौन हैं, इमाम हुसैन की जबान में यजीदी हैं। आयतुल्लाह सीस्तानी से मराजे से पूछा गया, इतनी बमबारी हो रही है, इतनी मार रहे हैं, इतना कत्ल कर रहे हैं, क्या हम मारें? कम कातिल को पकड़ो, नहत्ते को मार नहीं सकते, नहत्तों को मारना हमारा काम नहीं है, यजीदियों का काम है। तवज्जो का तालेब। फिर मौला ने कहा मौलेनुल फिस्क अलल एलान, गुनाह करने वाला। मेरे हुसैनियों, जहां तक जा आवाज जा रही है, शराब पीने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, बेनमाजी हुसैनी नहीं हो सकता, अलल एलान गुनाह करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता। इसलिए कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि ये मैं हूं। उसके बाद फरमाया मिथली ला युबायउ मिथला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। यानी मैं हुसैन यजीद की बैअत नहीं करता, नहीं, मुझ जैसा। अब अगर हमारा कोई आलिम ये कहे कि जालिम की, हम सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अगर हमारा आलिम कोई डट करके ये कहे कि हम जालिम के सामने झुकते नहीं, ये कहां से? मिथली ला युबाएओ मिथला। बस हो गई मजलिस। इमाम नाना के रोजे पे गए। खुदा किसी को वतन से ना छुड़ाए, और वो भी वतन मदीना जैसा, जहां भला हो बड़ा हो, जहां जो गोद में जिस नाना के खेला हो उस खाक से मोहब्बत है। नाना अस्सलाम अलैक या जद्दा, नाना नाना मेरा सलाम आप पर, नाना कहकर अगर कोई बोल सकता था तो सिवाय आपके कोई और नहीं था। अस्सलाम अलैक या जद्दा। उसके बाद कब्र पर हाथ रखा, अल्लाहुम्म अशहद हादा कब्र नबीयक, परवरदिगारा तू गवाह रहना ये तेरे नबी की कब्र है। अना इब्न बिन्त नबीयक, मैं तेरी नबी की बेटी का बेटा हूँ, तेरे नबी के बेटी का बेटा हूँ। यहाँ भी नबूवत का मसला है, मोहम्मद नहीं है, मकसद है। उसके बाद मौला ने फरमाया जो हो रहा है खुदाया तू देख रहा है, क्यों जा रहा हूँ? फिर मंशूर का ऐलान हुआ, मैनिफेस्टो ऑफ करबला, क्यों जा रहा हूं? उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहिया अनिल मुनकर, मैंने ये इरादा कर लिया है कि अम्र बिल मारूफ करूं, नहीं अनिल मुनकर करूं। जियारत पढ़ने में यही कहते हैं, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व आतैत जकात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर, ये गवाही देकर के वो इमाम हुसैन के जुमले की तस्दीक करते हैं। उसके बाद मौला ने थोड़ी देर बैठ कर कहा नाना अंदर ले लीजिए कब्र में। नहीं चाहता मैं जाना, नहीं चाहता यहां से जाना, नहीं चाहता नाना, नाना मैं चाहता हूं आपके पास रहूं, अंदर ले लीजिए। तारीख कहती इधर आंख बंद हुई, हातिफ की आवाज आई, इन्नल्लाह यशा अराका कतीला। ए हुसैन, खुदा चाहता है तुझे शहीद देखे। हुसैन उठे, इन्ना लिल्लाह। अजरकुम अल्लाह। नाना आपकी आवाज आ रही है, खुदा मुझे शहीद देखना चाहता है, चलो तैयारी करो, तरो चलो तैयारी करो। अब्बास, जैनब को इत्तला मिली है काफिला जा रहा है, और अब्बास के हाथ में पूरी तैयारी को दे दिया गया है। जैनब बहन, ये वो बहन है जब जो कभी भाई को जुदा नहीं देखा था, हमेशा जब भी तीन का नाम जब भी आएगा दूसरे तीन याद आएंगे, याकूब का नाम जब आएगा तो यूसुफ जरूर याद आएंगे, सरकार का जब नाम आएगा तो फातिमा जहरा जरूर याद आएंगी, जब भी हुसैन कहेंगे जैनब को जरूर याद करना पड़ेगा। ये दोनों को जुदा नहीं कर सकते। अब्बास आओ आओ यहां पर बैठो, सुना तुम्हें हेड बनाया गया है, आए तुम जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो करबला के लिए? हाँ शहजादी। अच्छा ये बता कौन कौन जा रहा है? शहजादी ये फहरिस्त है, सरकार का नाम है, मेरा नाम है, अली अकबर का नाम है, पूरे पूरे मर्दों के नाम, उसके बाद औरतों का नाम का शुरू हुआ सिलसिला, कुलसुम का नाम है, रुकैया का नाम है, नाम की फहरिस्त खत्म हो रही है, जैनब डूब रही है। खत्म हो गई। हाँ शहजादी खत्म का मेरा नाम का नहीं है नाम का माँ जाए को बुलाओ। हुसैन आएगा मैं नहीं चलूंगी का बहन मैंने कल ऐलान कर दिया अमर बिल मारूफ के लिए जा रहा हूं बगैर शौहर की इजाजत की औरत बाहर नहीं जा सकती। करबला इख्तियार की जगह है ऐसे ही चलने वाले का जगह नहीं है। एक मर्तबा अच्छा तुम चाहते हो कि मैं अब्दुल्ला से इजाजत ले लूं। तारीख ये कहती है कि अब्दुल्ला बुखार में तप में पड़े हुए हैं तकिए पे सर है। अब्दुल्ला कहते हैं जब मैंने जैनब की आवाज सुनी तकिए से सर को उठाया मैंने जो जैनब का आलम देखा ये था कि अगर मैं इजाजत ना देता जैनब की रूह परवास कर जाती। जाओ जाओ जैनब जाओ बस हो गई मजलिस दो जुमलों के लिए जहमत। कोई मामूली जात नहीं जा रही थी मदीने से हुसैन जा रहा था कोई मामूली शख्स नहीं था इमाम हुसैन जा रहे थे। रिवायतें कहती हैं कि जंगल की आग की तरह खबरें पहुंच गईं हर तरफ एक दो तीन चार मदीने वाले चारों तरफ बैतु शरफ के इमाम हुसैन के चारों तरफ घेर चुके थे। रावी कहता है रावी रिपोर्टर को कहते हैं कि मैं भागते हुए बैतु शरफ की तरफ गया क्या देखा कि इमाम के चारों तरफ मजमा है। इमाम बाहर कुर्सी पे तशरीफ फरमाए इशारा कर रहे हैं ये करो वो करो यहाँ तक के एक एक अमारी मुजैन आई पर्दों से लगी हुई मौला इशारा करते जाते थे एक एक बीबी सवार होती जाती थी। एक मर्तबा मुनादी ने निदा दी आए मदीने वालों दूर हट जाओ फातिमा की बेटी सवार हो रही है। हुसैन इस्तकबाल के लिए उठे अजरकुम अल्लाह आगे आगे अब्बास पीछे अली अकबर अमारी के करीब गए अब्बास ने जानू पेश किया अली अकबर ने पर्दे को हटाया हुसैन ने बाजू को थामा चाहती थी अंदर जाए आवाज आई जैनब रुको पलट कर क्या देखा अब्दुल्ला उन मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله खुदाया परवरदिगारा अहले बैत की ज़िंदगी को समझने और उन पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा परचमे इस्लाम को बुलंद फरमा दुश्मनान इस्लाम दहशतगर्दों दहशतगर्दों के सरगनों को तहस कर नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा जो परेशान हाल हैं इनके परेशानियों को दूर फरमा बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा मकरूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तमा से दुआ कहा उन सबको सेहत कामिल आजला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ हमारे रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नखवत व गीबत को दूर फरमा जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे जो लड़के लड़कियाँ नाकद खुदा हैं उन्हें कद खुदा कर दे। मालिक हमारे मरहूमीन को बख्श दे जिनको तूने बख्श दिया उनको जवार इमाम जगह इनायत फरमा। मालिक मुहर्रम का आगाज़ है खुदाया سرزمین پاکستان، سرزمین مسلمانوں کی، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما خدایا پروردگارا، ان فساد کرنے والے مفسدوں کو جلد سے جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے مالک، جلد سے جلد ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سہل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں کا شمار فرما۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیک وعلی ولدیک العلیین و اخیک بالفضل العباس و سائر المستشهدین بین یدیک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن مصر رضا وعلی بائک وابنائک طیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا سیدی ویا مولای یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظهورک، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔